गायरव ने उसका हाथ हटाया और जबड़े भींच लिए। सिया, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं मैरिड हूं, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, उसके साथ खुश हूं। मैं ना तो कभी तुम्हारा था और ना ही कभी हो सकता हूं, इसलिए अपनी ये जिद छोड़ दो। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारी ये जिद तुम्हें बर्बाद कर देगी। मुझे मंजूर है, तुम्हारे लिए अगर मुझे खुद को बर्बाद भी करना पड़ा तो मैं करूंगी, लेकिन तुम्हें हासिल करके रहूंगी। कायरव ने वार्निंग देते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सिया नहीं मानी। वो दोबारा आकर नागिन जैसे उससे लिपट गई और उसकी गर्दन पर अपने होठों के निशान छोड़ने लगी। प्लीज कायरव, एक चांस, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। कायरव की माथे और बांह की नसें तनकर उभर आई, जो उसके बर्दाश्त की शिद्दत दिखा रही थी। उसने सिया को कंधों से पकड़कर पीछे किया। सिया, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपने इस पागलपन को यहीं रोक दो। ये सब करके भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी मोहब्बत इनाया है और वही रहेगी। तुम्हारा यहां कोई चांस नहीं है, इसीलिए बंद करो अपनी ये हरकतें और निकल जाओ मेरे रूम से। कायरव की बात सुनकर सिया का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन वो ट्राई करती रही। उसने अपनी ड्रेस का स्ट्रैप नीचे सरकाया। देखो कायरव, मैं कितनी हॉट हूं, इनाया से बेहतर। कायरव ने मुंह फेर लिया। यू आर डिस्गस्टिंग, मैं जा रहा हूं। कायरव उसे वहीं छोड़कर लंबे लंबे डग भरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन सिया ने उसे पकड़ लिया। नहीं, तुम मेरे हो, आज तुम्हें मेरा बनना ही होगा। मैं तुम्हें ऐसे यहां से नहीं जाने दूंगी। सिया किसी भूखी शेरनी जैसे उस पर टूट पड़ी, उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगी। कायरव प्लीज, एक बार ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगा, बस एक बार। मैं तुम्हें ऐसा मजा दूंगी कि तुम अपनी उस दो कौड़ी की वाइफ को भी भूल जाओगे। सिया जबरदस्ती उसके करीब जाने लगे, उसके सीने और गर्दन को चूमने लगी। उसने कायरव को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और छोड़ने का कोई इरादा भी नहीं था। वहीं उसकी ये हरकतें और इनाया के बारे में कहीं बातें सुनकर कायरव की आंखों में खून उतर आया था। अब तक तो वो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उसे समझाने की ही कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर आ चुका था। उसने खुद से लिपटी सिया को पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर छटक दिया। सिया संभल नहीं पाई और फर्श पर जा गिरी। I said stop behaving like a, कायरव जबड़े भींचते हुए चेहरा फेर गया। वो कुछ गलत नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ये लड़की उसे मजबूर कर रही थी। कायरव ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को शांत किया और वापस सिया की तरफ पलटा, जिसका चेहरा गुस्से और अपमान की शिद्दत से लाल हो चुका था। कायरव का यूं झटकना उसकी इंसल्ट थी, जो उसे नागवार गुजरे थी। सिया, कायरव ने मुंह खोला ही था कि सिया गुस्से से चीखती हुई उठकर खड़ी हो गई। नहीं सुनना अब मुझे तुम्हारी कोई बात। मैंने तुम्हें इतनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी नज़रों में मेरे प्यार, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुमने हर बार बस मेरी इंसल्ट की, मुझे धुतकारते हुए खुद से दूर किया। अभी भी तुम वही कर रहे हो। किसके लिए? अपनी उस सड़क छाप बीवी के लिए, जिसकी मेरे सामने कोई औकात ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है, मुझसे मेरा प्यार छीन कर, मुझे धोखा देकर तुम अपनी वाइफ के साथ खुश रह लोगे और मैं तुम्हें रहने दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा तो मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत को भी छीन लूंगी। जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया, मैं उसे तुम्हें छोड़कर जाने पर मजबूर कर दूंगी। तुमने मेरे प्यार की कद्र नहीं की, अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत ही तुमसे इतनी नफरत करेगी कि तुम्हें और तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बनोगे, तुम्हें बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ूंगी। सिया की इतनी बड़ी बड़ी धमकियों ने कायरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई और वो गहरी निगाहों से उसे देखने लगा, लेकिन वो सिया के इरादे समझ पाता उससे पहले ही सिया ने अपना आखिरी दाव चल दिया। सिया ने शातिर मुस्कान के साथ कायरव को देखते हुए अपने नाखूनों को अपनी बाँह और गर्दन पर मारा। तेज दर्द के साथ जलन से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। सिया ने अब अपना हुलिया बिगाड़ना शुरू किया, ड्रेस का फ्रंट फाड़ा जिससे ब्रास स्ट्रैप दिखने लगी, बालों को अपने हाथों से उलझाया, मस्कारा स्मच किया और लिपस्टिक फैलाया। कायरव को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराई, फिर आंखों में आंसू भरे और चिल्लाती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकली। हेल्प, हेल्प, कोई बचाओ! सीढ़ियां उतरते हुए वो रो रही थी, गिरते पड़ते बदहवासी भाग रही थी। नीचे हॉल में म्यूजिक रुक गया, सबकी नजरें ऊपर उठी। सिया सीढ़ियां उतरते हुए रो रही थी, उसके कपड़े फटे, चेहरा बिगड़ा हुआ। सभी उसे इस हालत में देखकर शॉक्ड रह गए। मिसेस मल्होत्रा अपनी बेटी की ये हालत देखकर घबरा गईं और तुरंत ही आगे आईं। सिया दौड़ते हुए आकर मॉम बोलते हुए उनके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। बाकी सबने भी उसके आसपास भीड़ लगा ली। मिस्टर मल्होत्रा के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस रायचंद भी वहां आ गए। सिया बेटा, ये सब क्या है? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे? मिस्टर रायचंद ने गुस्से से कहा, साथ ही ऐसा दिखाया जैसे सिया की उन्हें कितनी ही फिक्र हो।
मिसेस मल्होत्रा जो सिया को अपने सीने से लगाए उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने सिया को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। सिया बेटा, बताओ हमें ये सब कैसे हुआ, किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारी बेटी की इज्जत पर हाथ डाले? तुम बस एक बार हमें उस हरामखोर का नाम बता दो, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। हमारी बेटी के साथ जो उसने किया उसकी सजा हम खुद देंगे उसे। मिस्टर मल्होत्रा का खून गुस्से से उबलने लगा। सिया ने भीगी पलकें उठाकर बारी बारी अपने मॉम डैड को देखा और सिसकते हुए बोली, मॉम डैड, कायरव ने मुझे बहाने से अपने रूम में बुलाया और रेप करने की कोशिश की। आंसुओं के दरमियान उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। पूरे हॉल में ये सुनकर खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। नितिन, मिसेस रायचंद के साथ कुछ और लोग जो कायरव को करीब से जानते थे, ये सुनकर शॉक थे। वहीं इनाया का चेहरा बिल्कुल सपाट था, वो बस इतनी देर से खामोशी से सिया को देखे जा रही थी। ऊपर रूम में जिस तरह सिया ने अपनी हालत बनाई और जैसे चिल्लाती हुई भागी, कायरव उसकी चाल समझ चुका था, लेकिन अफसोस कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूम का गेट खुला था, सिया जा चुकी थी और नीचे से आती आवाजें इस बात का सबूत थी कि उसने अपनी चाल चल दी है। अब उसका अंजाम देखना बाकी था। कायरव ने गहरी सांस छोड़ी और रूम से बाहर निकल गया। नीचे सभी सिया की बात सुनकर हैरान थे। पूरे हॉल में अब तरह तरह की बातें होने लगी थी। इसी बीच कायरव सीढ़ियों से नीचे उतरता नजर आया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और सर्द निगाहें सिया पर टिकी थी। कायरव को देखते ही मीडिया, जो सिया को घेरे खड़ी थी, अब उसकी तरफ दौड़ गई और उस पर सवालों की बौछार कर दी। दूर खड़ी इनाया चुप सी कायरव के शांत चेहरे को देख रही थी। उसने नितिन को कुछ कहा तो उसने सर हिलाया और उसके एक ऑर्डर पर गार्ड्स ने मीडिया को वहां से हटा दिया। अब वो हॉल के एक कोने में खड़े लगातार सवाल कर रहे थे और फोटोज क्लिक कर रहे थे। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। मिस्टर मल्होत्रा ने कायरव को देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। गुस्से से बौखलाए वो कायरव की तरफ बढ़ गए। यू ब्लडी, जुबान संभाल कर बात कीजिए, इनाया की तेज आवाज वहां गूंजी और सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। इनाया मिस्टर मल्होत्रा को गुस्से से घूर रही थी। भूलिए मत, आपके सामने कोई आम इंसान नहीं कायरव रायचंद खला है, और उसकी इंसल्ट में कहा एक गलत शब्द आपको और आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। जिस लहजे में इनाया ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा के गुरूर को ठेस लगी और वो गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कायरव पर हाथ उठा दिया, लेकिन इनाया ने बीच में ही उनका हाथ पकड़ लिया। आग उगलती नजरों से उन्हें घूरा।
सोचना भी मत, अपने इस गुस्से को अभी कंट्रोल में रखिए। अभी बस आपकी बेटी ने मेरे हस्बैंड पर इल्ज़ाम ही लगाया है। वो इल्ज़ाम सच है या झूठ, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। इनाया ने एक एक शब्द पर खासा जोर दिया था, जैसे उन्हें कुछ जता रही हों। मिस्टर मल्होत्रा ने उसका हाथ झटकते हुए उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। तुम से कहना क्या चाहती हो, मेरी बेटी झूठ बोल रही है? उसकी हालत देखकर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति ने कुछ गलत नहीं किया? गुस्से से उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। इनाया ने गहरी सांस छोड़ी और भवहीन सी बोली, देखिए अभी मैं कुछ भी नहीं कह रही, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस बंद रूम में मैं इन दोनों के साथ नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ऐना, इतनी देर से चुपचाप ये तमाशा देखते कायरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इनाया ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। मुझे अभी तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। इनाया का लहजा तल्ख था और बेरुखी से भरा। कायरव के मन में डर ने जन्म लिया और माथे पर सिलवटें उभर आईं। टू बी कंटिन्यूड।